सभ्यसाहूरम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदे कुंदाद्यो जैनी धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम् प्रधानम सर्वे धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानिभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वे भावान्तिरच्छदे वन्दितु सव्यसिद्धे द्रोमचल्मणोभवं गदिं पत्ते भोक्षामि समय पाहुर् मृणमो सुदकेवलीमणिदम्। समय सारी ग्रंथादिराज में 31 नंबर की गाथा। जो इंदिये जड़ता राड़ सहाबाधियं मुड़दियादं तम खलुजि दिंदियं ते बढ़ंति जेड़े छिदासाहु कर इंद्री जय ज्ञाने सुभाविरु अधिक जाने आत्मे को निश्चय विशेषित साधु जन भासे जितेंद्री उन्हीं को। जो इंद्रियों को जीतकर ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्यों से अधिक आत्मा को जानता है उसी निश्चय में स्थित साधु है वे वास्तव में जितेंद्री कहते हैं। यानी जीव को आत्मा जानना है ऐसा प्रश्न उठना चाहिए तो ये गाथाएं अच्छी लगी क्योंकि समय सार लिखा ही उसी के लिए। को असौ शुद्धात्मेति चेत हे प्रभु शुद्धात्मा बताओ जिसके आश्रय से आपको अनंत आनंद आता है निज वैभव की प्राप्ति हुई। चार प्रमाणिक तदीन परमागम के सेवन से युक्ति के अवलंबन से परंपरा गुरु के उपदेश से प्रसाद से और चौथा लिखा है स्वानुभव से। ये चार प्रमाणिक तदी यानी हमें ये जो बात आत्मा की प्राप्त हुई है ये आत्मा की उपलब्धि हमने जिनागम पढ़ा तो उसमें भी आत्मा का स्वरूप बताया और सिर्फ हमने पढ़ा नहीं है अपने ज्ञान का प्रयोग किया है युक्ति लगाई। किसी ने कह दिया कि आत्मा आनंदमयी है तो हमने ऐसा नहीं माना है हमने देखा है कि विषयों में आनंद नहीं है। जब इच्छाएं घटती हैं आत्मा के बल से इच्छाएं उत्पन्न नहीं होती तो आनंद आता है। राग टूटने पे आनंद आता इतना सुंदर मंदिर बना भगवान बैठे इसके पहले अक्षय भाई कितनी मेहनत की आप लोगों ने रात दिन खड़े रहते थे और जब ये इच्छाएं नहीं रही तो शांति लगी भगवान विराजमान हो गए कितना अच्छा लग रहा है। तो मंदिर बनने का अच्छा लगता है कि इच्छाएं घटने का अच्छा इनकी खोज कि अच्छा तो आत्मा है और अच्छा लग रहा है तो अच्छा क्या है कि आत्मा की जो आनंद की धारा इच्छाएं उत्पन्न होने से बाधित होती है अब वो इच्छा नहीं रहती है तो आनंद आता है। जैसे बाबू जी बताना भूख लगी तो भोजन करने से आनंद आता है कि भोजन करने से नहीं आता इच्छा घटने से आता है। इच्छा घटेगी तो आनंद आएगा। अपन ने इतना बड़ा उदाहरण दिया कि मंदिर जी बना और उसके बनाने की बहुत इच्छा थी और बन गया तो वो इच्छा नहीं रही, तो आनंद काय का है? इच्छा के अभाव का। ये तो नास्ति से कहा, अस्ति से है कि आत्मा ही आनंदमयी, आनंदमयी आत्मा को बताने वाला एक ग्रंथ है। कैसा बेजोड़ ग्रंथ होगा, कुंद कुंद देव की कलम कैसी चली होगी, क्या बताने के लिए विदेश क्षेत्र गए और वहां से लाए कि हे संसार के जीवो, तुम भगवान हो, अपने को भगवान जानो। अब कैसे जाने, इसकी चर्चा 31 गाथा में दी है कि आपको बाहर से तो शरीर दिखेगा, कि बाहर से आत्मा नहीं दिखेगी। और ये व्यवहार ने कहेगा ये 5 इंद्रिय जीव है, 1 इंद्रिय जीव है, 2 इंद्रिय है, त्रियंश है, नारकी है, देव है, ये सब बाहर से एक नए है, जिसकी अभी गुरुदेव चर्चा कर रहे थे। उस सब नए संयोग का ज्ञान कराएगा, स्वभाव का नहीं कराएगा, और वैसे ही जीव मानेगा तो मिथ्या होगा। तो बाहर से कहेंगे बहने यहां बैठेंगी, भाई लोग यहां बैठे, ये लौकिक व्यवस्था व्यवहार की। पर कोई ऐसा मान ले कि ये जो बहने हैं ना, ये आत्मा नहीं है, बहन ही बहन है, और ये भाई है ना, ये आत्मा नहीं, तो ये तो उल्टा हो जाएगा। ये तो लौकिक व्यवस्था के लिए पार्टीशन किया, परंतु पारलौकिक व्यवस्था क्या है, सब में सिद्धत्व की स्थापना की। कोई स्त्री नहीं होता, कोई पुरुष नहीं होता, सब आत्मा है, सब ज्ञान स्वभावी है, सब चैतन्यमयी है, सब जाननहार विराजमान है। यहाँ कोई शरीर रूप नहीं है, कर्म राग रूप नहीं है, यथार्थता का भी ये बोध कराती। तो पहली कल्प अन्य पढ़ा था कि द्रव्य इंद्रियों से वेद विज्ञान कराया, क्योंकि ये रोम रोम में भर गया है। क्या भर गया है कि आत्मा तो दिखता है नहीं, ज्ञान तो आत्मा से आता दिखता नहीं, तो दिखता कहाँ से है? आंख खुली रहती तो ज्ञान होता, कान के पर्दे अच्छे रहते तो सुना पड़ता है, जिभ्य इंद्री छाले ना पड़े हो, कोई रोग ना हो तो स्वाद ले सकते। इस तरह से जीव ने अपने आप को तो सर्वथा भुला दिया, और ये सब कुछ ही मट्टी की रचना बैठ गई हावी होकर। तो आचार्य ने कहा कि ये तो शरीर परिणाम को प्राप्त जड़ है, ये इससे जीव का क्या संबंध, ये तो अभी मिली है, अभी छूट जाएंगी, ये तो आया राम गया राम है, मट्टी का रचना है, तुमने बनाई नहीं है, और तुम्हारे अनुसार नहीं चलती है, ये अपनी योग्यता से चलती है। और कब तक रहना इसे मालूम है, तुम्हें नहीं मालूम, और कब छूट जाएगी ये आपके विकल्पों से नहीं छूटेगी, इसलिए आप इसका स्वामित्व एकत्व ममत्व तोड़ दो। तो फिर हम रहेंगे कैसे, कि ये ही तो भ्रांति से संसार चल रहा, हम आज तक आत्मा के बल से ही रहे उपयोग स्वरूपी, पर वो दिखाई नहीं दिया इसलिए संसार फला, फिर शरीर मिले, फिर शरीर में, और कल दूसरी इंद्री है भाव इंद्री, इससे भी विज्ञान कराया था। और बाबू जी एक काम सौंपा था, निर्मल वेद अभ्यास करना, आप अपने को ज्ञाता देखने की आदत डाल। ये ऐसा कहा जाता है ना, कुछ करना तो नहीं, कुछ करना नहीं है, यानी द्रव्य गुण पर्याय में कुछ नहीं करना, विकल्पों से कुछ नहीं होता, राग वाला करना नहीं है, पर निर्णय वाला करना है। स्वामी जी कहते थे हूं परमात्मा छू एम, ये तो काम तो सौंपा, तो काम ये काम नहीं कहलाते, ये तो तेरा अधिकार है, स्वरूप जानना समझना निर्णय लेना, ये तो स्वाभाविक ज्ञान का स्वरूप, ये करना नहीं कहलाता। परंतु जीव इस तरफ ध्यान नहीं देता, तब अपन उसको भाषा देते ऐसा करो, तो निर्णय कर, अनुभव कर, ऐसा सब समझाते। तो अभी ये कह रहे हैं कि निर्मल भेदाभ्यास से अपने को आत्मा देखने की आदत डाल। जैसे अपन को अभी मंदिर जी आए भगवान के दर्शन में, तो भगवान के दर्शन में ज्ञान के दर्शन होना चाहिए, क्योंकि भगवान कभी भगवान में नहीं दिखते, भगवान अपने ज्ञान में दिखते। तो ज्ञान ना हो तो भगवान के दर्शन नहीं हो, तो अपन ज्ञान को भी तो आदर दें कभी, कि जिसकी कृपा से श्री जी के दर्शन हुए उस ज्ञान को तो अपन पीछे करते, और जो बिल्कुल भी कारण नहीं है, यानी इस ज्ञान की पर्याय बनाने में, तीन लोग और सारे जगत के तीन लोग के पदार्थों से ज्ञान मान के बैठा है, इतना बड़ा अपमान है अनंतानंदी के साथ। 6 बातें कहते थे अक्षय भाई स्वामी जी, प्रवचन नवनीत में आई, मतलब ये बहुत दुर्लभ बातें हैं जो गुरुदेव कहते थे। पहले तो ये कहते थे लोकालोक है इसलिए हमें लोकालोक का ज्ञान होता है, इसने आत्महत्या का पाप लादा। लोकालोक में 6 द्रव्य, पुस्तक घड़ी घंटा, ये सब लगा लें, इतना जगत है, ये है इसलिए ज्ञान होता है, और भगवान क्या बताते हैं, ज्ञान है इसलिए घी बनती है। एकदम नजर पलट जाए ऐसा ज्ञानियों का समागम होता। पहली भूल क्या थी, लोकालोक होने से हम ज्ञान मानते थे, हमारा ज्ञान क्यों है, क्योंकि ये घी है। दूसरे ही कहते थे गुरुदेव गड़बड़ी, कहते थे छह बहुत बड़ी गड़बड़ी जैनियों में चलती, बहुत बड़ी गड़बड़ी कहते थे। दूसरा है कि ये जीव व्यवहार करते करते निश्चय की प्राप्ति की आशा में लगा के बैठे, कैसे, हम रोज मंदिर आ रहे तो क्यों कल्याण नहीं होगा, हम रोज प्रवचन सुन रहे तो क्यों कल्याण नहीं होगा। वो कह रहे प्रवचन सुनना मंदिर आना राग है और निर्णय लेना ज्ञान, समझना ज्ञान है और आना जाना राग है। तो अपन ने क्या माना था, व्यवहार करते यानी हम रोज आते तो कैसे एक न एक दिन कल्याण होगा। वो कह रहे हैं कि एक बार भी ज्ञान का सदुपयोग करे तो क्यों नहीं कल्याण होगा। थे ज्ञान को जगाए अंश हंस खोज लीजिए, तो दो गए भैसा बाबू जी। और तीसरा बताते थे कि ये जीव निमित्त से उपादान में काम मानता, बहुत बड़ी गड़बड़ी, कार्य काय से होता सुलभ उपादान से, मानता काय से निमित्त से, क्यों मानता है कि जब उपादान से कार्य होता है तो योग निमित्त वहां होता है, तो इसकी दृष्टि में क्या आता है निमित्त, और कार्य काय से हुआ उपादान वो दिखता ही नहीं, क्यों नहीं दिखता, दिखता तो सब है, दिखता रोटी आटा की बन रही थी ये नहीं दिखता, पर बाई बनाती ये दिखता है, क्योंकि इस निगाह से देखोगे तो ये तो दिखेगा स्थूल, केवल ज्ञान की निगाह से देखोगे तो आटे में से रोटी की पर्याय आ रही। तीन भूले हो गई, बहुत बड़ी गड़बड़ी कहते थे इसे, क्योंकि ये सैद्धांतिक भूल है, तात्विक भूल है, जहर है, इसके विपरीतता के कारण निगोच जाता है। लोकालोक है इसलिए लोकालोक का ज्ञान, व्यवहार करते करते निश्चय की प्राप्ति होती है, निमित्त के बिना उपादान में कुछ नहीं होता, निमित्त से होता है। चौथा बताते थे कि पर्याय अशुद्ध होने से द्रव अशुद्ध हो जाता। चौथी भूल क्या है जय थी, पर्याय की अशुद्धि से द्रव अशुद्ध हुआ, तो कितना अंतर, किसने तो पूरे द्रव को नष्ट कर डाला, यानी पानी गर्म हुआ यानी स्वभाव ही गर्म हो गया, यानी किसी को राग द्वेष मोह कसाय चोरी के परिणाम आए, इसका अर्थ वो द्रव ही चोर हो गया, ये तो परिणाम है, पर्याय में हुआ, क्षणिक है, छूट जाएगा, अंजन चोर निरंजन बना की नहीं, यदि वो परिणाम ही द्रव के भीतर प्रवेश कर जाता तो फिर अंजन निरंजन कैसे बनता। तो चौथा क्या बताया, पर्याय की अशुद्धि से द्रव में अशुद्धि मानता है। छठवा ये कहता है, पांचवा ये कहता है कि ये अभी तो संसारी है, सिद्ध कहां, सिद्ध तो होगा अभी, अपना देखो बाहर से तो ऐसे ही लगता है, क्योंकि अपन देखते हैं पर्यायार्थिक और ज्ञानी जन बताते हैं द्रव्यार्थिक, जो अपना परिचय में नहीं, तो द्रव पर्याय का जैसा है वैसा ज्ञान होना गलत नहीं, परंतु अपन ने तो मूल सत्ता उड़ा दी, तो क्या माना कि अभी तो हम संसारी हैं और हमें सिद्ध होना है, और इसमें क्या लिखा है, तुम सिद्ध हो तो पर्याय में सिद्ध हो जाओगे, कितना अंतर है सोचो। हमने क्या माना था कि हम संसारी हैं, यानी हम कहां खड़े थे, पर्याय में, और क्या होना चाहते थे, पर्याय को सुधार सुधार के सिद्ध, और भगवान ने क्या बताया कि तुम सिद्ध हो ऐसा देखोगे तो पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित मुनि दशा केवल ज्ञान हो जाए। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर, पर्याय दृष्टि विनेश्वर, द्रव्य में परमेश्वर है। पांचवा क्या बताया जी, पर्याय की अशुद्धि से द्रव्य अशुद्ध हो जाता। और छठवी गड़बड़ी ये कहते थे कि क्रमबद्ध मानने से पुरुषार्थ का लोप होता। क्या कहते थे छठवा, क्रमबद्ध को मानेंगे सब कुछ निश्चित है तो हमारे करने लायक क्या रहा, ऐसा जीव को पता नहीं चलता कि क्रमबद्ध के निर्णय में अनंत पुरुषार्थ, सारा कर्तृत्व टूट जाता है, दृष्टि अंतर्मुख हो जाती है, स्वानुभूति हो जाती है, भगवान बन जाता है, ये क्रमबद्ध का एक निर्णय महान पराक्रम और बहुत बड़ी उपलब्धि है, पर इसमें जीव को अपना पुरुषार्थ तोड़ते दिखता है, क्यों, क्योंकि इसे वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आता तो राग में खड़ा हो जाता, कुछ नहीं करें ऐसे ऐसी बन जाएगी रोटी, बन जाएगी आटा रखा रहे आटा, ऐसे कुतर्क करता है। उनके ज्ञानियों के हार्द को नहीं समझता कि आटा रखा रहेगा रोटी बन जाएगी। अरे जब आटा रुके रोटी बनने का काल आता है उस समय बाई को बेचैनी होती है, उसके योग उपयोग हिलते और उस समय वो आए बिना नहीं रहती और वो आटा वो वाला जाएगा जिसकी आज रोटी बनना। बाबू जी एक प्रश्न है, जैसे आटा गुथा रखा है और बई ने निर्णय करके रखा कि इसकी हमें रोटी बनाना है, 8, 10, 12 रोटी बनाना, और भाई साहब आए इन्होंने कहा कि मुझे बाहर जाना है पराठा बना दो या पूड़ी बना दो, तो वो जो रोटी का आटा था अब वो पूड़ी बनने लगा पराठा बनने लगा, तो उसमें बाई का रोल है कि नहीं बाबू जी? क्योंकि यदि वो आटा का काम तो रोटी बनाने का था आज का, और वो तो बाई के डायरेक्शन में पराठा बनने लगा पूड़ी बनने लगा, तो ये बाई के हाथ में है कि नहीं डॉक्टर साहब? अरे तो वो सामने पराठा बनाने लगे। अब केवल ज्ञानी को बुलाओ आप अपने माथे में और उनसे पूछो कि भगवान आज तो रोटी बनना थी ये पूड़ी बनाया, बाबू जी ने कहा पूड़ी बनने लगी, इसका अर्थ ये भाई करता है। तो भगवान ये कहेंगे कि 8 रोटी बनने का आटा था और 8 के बाद 9वां से पराठा बनने का रोटा, ये द्रव्य में पड़ा है, ये आपको नहीं दिखता केवल ज्ञानी को दिखता। इसलिए तो संसार में तकलीफ होती जीव को समझने में, ये कर्ता बुद्धि नहीं टूटेगी तो जीव की अंतर्मुख दृष्टि नहीं हो। क्रमबद्ध मानने से बहुत कर्तत्व टूटता, निश्चिंतता आती। तो 6 बातें याद होंगी सुलभ। कम से कम याद ही रह जाए तो बहुत बड़ी बात है। लोकालोक है इसलिए लोकालोक का ज्ञान होता, बोलो लोकालोक है इसलिए लोकालोक का ज्ञान होता। इसने क्या नुकसान कर लिया, अपने स्वभाव का घात किया कि दूसरे द्रव्य से अपना जीवन माना। सबसे बड़ा पाप है ज्ञान स्वभाव को ढांका और गेय से ज्ञान मानने का पाप है, पराधीन जीवन हो गया। अब ऐसे जानने के लिए केवल ज्ञान के लिए ऐसी आंख फाड़ना पड़े, यहां नहीं देखे। और दूसरा क्या बताया था बाबू जी, व्यवहार करते करते निश्चय हो जाएगा। और ज्ञानी जन क्या सिखाते हैं, जिसे निश्चय का लक्ष्य होता है उसका व्यवहार आए बिना रहता नहीं। वो क्या मानता था सलाह, व्यवहार करते करते निश्चय होगा, यानी व्यवहार यानी हमेशा करेंगे ऐसा करेंगे तो आत्मा दिख जाएगी। और आचार्य देव ने क्या कहा, आत्मा देखने के लिए आएगा तो कसाय बिंदी होगी व्यवहार आ जाएगा। तीसरा, निमित्त से उपादान में काम होता है। तो गलती क्या थी, निमित्त नहीं होता क्या? ऐसा नहीं है, जिनवाणी निमित्त का निषेध नहीं करती, निमित्त कर्तत्व का निषेध करती, निमित्त की दृष्टि का निषेध करती, पराधीन वृत्ति से आकुलता आती, देखते रहते कि ये मिलेगा तो काम होगा। आचार्य भगवान ये कहते हैं कि जहां कार्य होता है वहां योग निमित्त होता ही होता है, बस सोच में अंतर। सम्यक दर्शन हो शेर को और मुनिराज नहीं आएंगे विदेश, अपनी सोच परफेक्ट नहीं है ना तो आकुलता होती। यदि मुनिराज नहीं आए तो कि तुम अपनी तो में आग लगाओ। ये तो वस्तु व्यवस्था में किसी के विकल्प की कल्पना ही नहीं चलता। वो ज्ञानचंद जी बिरसा आते ना देवलाली में, तो वो कहते हैं कि ये मारीच का जीव कब भगवान बनेगा कि 24वें नंबर, तो इनकी मम्मी का नाम क्या होगा कि त्रिशला, और पिताजी का नाम क्या है सिद्धार्थ। तो हमारा एक प्रश्न है कि कहीं त्रिशला ने सिद्धार्थ से शादी नहीं की तो, ये तुम अपने तो में पहले आग लगाओ, ये तुम्हारे विकल्पों को पूछता कौन है, ये तो वस्तु व्यवस्था में ऐसा नियत है। जैसे हमने आत्मा देखा और शांति नहीं मिली तो समय दर्शन नहीं, ये कहां की बातें करते, आत्मा का विश्वास तो करो, सब रिजल्ट अच्छे आए। अपन सिखड़ी जाने वाली गाड़ी में बैठे और नहीं पहुंचे तो ऐसा सोचते हैं अपन, भोजन किया और नहीं पचा तो, ये सब विकल्प निरर्थक है, कुछ दम नहीं। राग से वितरागता नहीं आती, व्यवहार करते करते धर्म नहीं होती, निमित्त से उपादान में नहीं होता। उपादान उपाधि भाव रूप परिणमित होता है और योग निमित्त होता ही होता है। जैसे इस काल में 10-5 लाख लोगों के हृदय बदलना थे तो योग निमित्त गुरुदेव को आना पड़ा। ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, जीवों के उपादान ऐसे जग रहे थे। नहीं तो यहाँ तो अंधेरा छा गया था, यहाँ तो कोई बताने वाला नहीं था, ये चर्चा ही नहीं चलती थी पहले। कोई समझदार कोई उठा नहीं सकता था, कैसे उठाता, उसे समझे भी नहीं आता, पढ़ भी ली तो अर्थ ही नहीं निकालना था। तो ये तो वो व्यक्तित्व को आना ही पड़ता है। कुदरत में प्राकृतिक व्यवस्था है कि जब आटा रोटी रूप परिणमित होता है तो चूल्हा जलता है, बाई आती है, हाथ चलते है, पटा बिल्ला सब होता है, पर कोई भी सामग्री से रोटी नहीं बनती। रोटी तो आटा से ही बनती। और सबसे बड़ा पाप पर्याय अशुद्ध होने से द्रव शुद्ध माना था, यानी अपने तो दिमाग खराब हो गए थे, अपन को तो निकलने की कोई गली नहीं रह गई थी। हम तो पापी हैं, हम तो अज्ञानी, हमारा तो कल्याण नहीं हो सकता, हमने इतने पाप किए। वो कह रहे भैया पाप परिणाम में होते और दूसरे समय ठहरते नहीं, तुम्हारा कुछ गड़बड़ नहीं है, तुम बहुत पवित्र जीव। ऐसा कोई कहने वाला है तो जैन धर्म है। कितने पाप हुए, कितनी अनंतों पाप हुए ना, तो बताना दूसरे समय रख के बताना भी पाप कहां, दूसरे समय उनको खड़ा करके बता दो आप। ये वस्तु में द्रव्य में ये व्यवस्था पड़ी, ये पर्याय दूसरे समय रहती नहीं, अपने आप चली जाती, इसे हटाना नहीं पड़ता। इसलिए पाप पुण्य की शिकायतें न करके उन्हें भिन्न जान के द्रव स्वभाव को देखने के लिए हमेशा अवसर। साथ में नरक का नारकी भी आत्मा देख सकता है, क्योंकि नरक पर्याय से भिन्न आत्मा है। पापी जीव भी आत्मा देख सकता है, क्योंकि पाप परिणाम समय बढ़ती है, आत्मा तरी काले। तो इस तरह 6 बोल गुरुदेव बताते थे। आज अपन को भावेंद्र जीतने के लिए बता रहे हैं कि ये भावेंद्री क्या कहलाती है, अपन को विचार करना। अभी तो द्रव्येंद्रियों से बताएं कि ये सब पुद्गल की रचना है, इससे जीव का क्या लेना देना, ये तो मिलती है छूटती है, ये तो खिड़की जैसी, ये सब ढक्कन खिड़की जैसे, ये खुले रहते तो भीतर से ग्राहक देख लेता है और बंद रहते तो भीतर का देखता है जो उसे गेय बनना है, पर इनसे नहीं देखता, इनसे नहीं सुनता है। वो जब सुनता है तब ये निमित्त बनते, ऐसा जानने से आत्मा ऊर्ध हो गई, आत्मा दिखने लगी। अब वो कहते भावेंद्री से आत्मा जीतो आप, तो भावेंद्री क्या कहलाती, कि जहां ये समयसार का ज्ञान, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का, मकान दुकान घर गृहस्थी का ये ज्ञान है तो ज्ञान अपना और गे की तरफ उन्मुख है, गे की रीडिंग करता है ना, मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, गे का ज्ञान, अनेक प्रकार के अपन जितनी पदार्थ हैं पढ़ाई हैं कंप्यूटर आदि की, उतना अनेक प्रकार का ज्ञान है। 5 इंद्रियों से निमित्त बनने पर ज्ञान होता है। वो कहते हैं ये सब खंड खंड ज्ञान है, अब इसे कैसे जीतोगे आप, ये तो कह रहे सर्वथा भिन्न करके भावेंद्री को आत्मा से सर्वथा भिन्न करके, यानी ये बिल्कुल भी आत्मा नहीं है। क्या नहीं आत्मा, कि जो तुमने पढ़ा लिखा है वो आत्मा नहीं है, जो आत्मा है उसे पढ़ाई की जरूरत नहीं होती, वो स्वभाव से ही ज्ञाता है। उसे जानने वाला बनना नहीं है, उसे जाननहार बनाना नहीं है, उसे ज्ञान स्वभावी नहीं बनाना है, वो ज्ञान स्वभावी है। अब करना क्या है, ऐसे ज्ञान स्वभाव को जानना था तो सम्यक ज्ञान होता। आप रूप को जान पनोसो, सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप को जानो ये सम्यक ज्ञान कहलाता। अब अपन ने क्या किया कि आत्मा को तो न जानकर आत्मा के बारे में जानना चालू कर दिया। देखो ऐसा फैलते जाते, ज्ञानी जन समेटते जाते और अपन ऐसे ही फैलते जाते। गुरुदेव पढ़ाएंगे गुणस्थान तो कैसे पढ़ाएंगे, आत्मा में गुणस्थान नहीं होती। अपन कैसे पढ़ाएंगे, आत्मा में गुणस्थान 14 होते। पढ़ाना भी सीखना है तो गुरुजी को लाना पड़ेगा। तो सुनना भी यही भावेंद्री का थोड़ी कम ज्ञान हो बाबू जी, और किसी को बहुत ज्यादा, अच्छे अच्छे विद्वान पंडित होते, अच्छे अच्छे सम होते, इंजीनियर डॉक्टरों को अच्छा होता है, दार्शनिकों को वैज्ञानिकों को बहुत होता है, और किसी किसी को नहीं होता, बहुत कम होता है। अब दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक को कम ज्ञान है और एक को ज्यादा ज्ञान। तो ज्यादा ज्ञान भी गेय का है और कम ज्ञान भी गेय का, ये इसलिए आप बच गए क्योंकि ये गेय जैसे अपन ने समय सार की गाथाएं सब याद नहीं रही, तो कम ज्ञान है और किसी को 415 गाथाएं तो पूरा ज्ञान है, तो गेय का ज्ञान तो है ना उसे, इसमें अज्ञाय का, इसलिए उसे डिप्रेस नहीं होना चाहिए और अहम नहीं करना चाहिए क्योंकि ये तो गेय की ऋण है। इसे सर्वथा आप अपने ज्ञाता से अलग देखोगे तो आत्मा पूरा दिखेगा चैतन्य सूर, और इससे देखा तो आत्मा हीन और कम बड़ा ज्यादा छोटा बड़ा दिखेगा, आकुलता होगी। कितना बड़ा प्रकांड विद्वान है तो आत्मा ही, कितना कम जानता हो है तो जीव ही ना आत्मा, ऐसा देखोगे तो समता आएगी। आप किसी बहन से हमने प्रश्न पूछा, नहीं बना, नहीं बना होगा, इसमें क्या छेप समय नहीं याद आया, जबरदस्ती करोगे क्या किसी के साथ? तो ये धर्म कितना गजब का धर्म है, नहीं याद रहता तो भी कोई नुकसान नहीं और सारा विषय याद रहता है तो भी कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ये गेय की क्लास है जो कम जानना और ज्यादा जान। फिर हमें आत्मा कैसे देखे कि ये सर्वथा जो जाना है ना उसे आत्मा नहीं मानो, जानने को आत्मा मानो। डॉक्टर साहब इतना सरल करके परोसा है इसमें 32 गाथा 31 में कि वो जो आपकी भावेंद्रियां हैं, अब इसका नाम भावेंद्रिय क्यों पड़ा मान, क्योंकि ये है तो ज्ञान आत्मा का और ये इंद्रियों के माध्यम से व्यापार करता, इसलिए नाम पड़ गया इंद्री, नहीं तो है तो वो आत्मा है तो ज्ञान, परंतु अब ज्ञान नहीं रहता, क्यों? क्योंकि संगति ऐसी करता, पराया ज्ञान यहां पर की। तीन प्रकार के ज्ञानी बताए इसी समय सार में, तीन प्रकार के ज्ञान। एक सभी जीव ज्ञानी है, क्योंकि ज्ञान स्वभावी होने से सभी जीव निगोदिया से लेकर सिद्ध भगवान तक सब जीव कैसे हैं, ज्ञान स्वभावी होने से ज्ञानी ही हैं। दूसरा, ज्ञान स्वभावी तो हैं परंतु जीव को पता नहीं है कि मैं ज्ञान स्वभावी हूं, तो वो दूसरा चौथे गुण स्थान से चालू होता ज्ञानी की संज्ञा, बारहवें तक जानते। जो ज्ञान स्वभावी आत्मा है उसे ज्ञान में प्रसिद्ध करना, ज्ञान से ज्ञानमयी आत्मा को जानना, ये दूसरे नंबर के ज्ञान, और ऐसे ज्ञान की सामर्थ्य पूरी खिल गई जिनकी, ऐसे तेरहवें गुरुस्थान वर्ती केवल ज्ञानी। तो कितने ज्ञानी हो गए भैया, एक ज्ञान स्वभावी आत्मा ज्ञानी, एक सम्य ज्ञानी ज्ञानी है और एक केवल ज्ञानी ज्ञानी, दो प्रकार से हो गए। अब एक तीसरा निरूप, एक जी है ज्ञायक भगवान और ये उसका प्रकट अंश है ज्ञान, एक अपना आत्मा है जिसका नाम है ज्ञाय, ये है ज्ञान स्वभावी ज्ञानानंद स्वभावी, और इसका परिचय प्रगट ज्ञान में होता है, व्यक्त ज्ञान में जो आपको सबको है, व्यक्त ज्ञान प्रगट ज्ञान और ये अव्यक्त ज्ञाय है, तो ये भी प्रगट पर जगत से न्यारा बताने के लिए कभी अव्यक्त भी कहते कभी प्रगट भी कहते, तो ज्ञायक ज्ञान और ये सब सारा जगत गेय, तीन चीजें होगी ना भाई, ज्ञायक है प्रगट अपना ज्ञान चिन्ह है लक्षण है, इससे आपका पता चलता है कि आप आत्मा हो, और ये जगत के गे आप नहीं हो परंतु आपके ज्ञान में झलकते दिखते, तो तभी तो आप कहते हो कि ये सब क्या दिख रहा है, तो ज्ञानी को तो ज्ञान दिखता है और अज्ञानी को गे दिखता, वजन की बात है, गे दिखने पर भी वजन काय पे रहता है उसका ज्ञान पर, और अज्ञानी का वजन काय पे रहता है गे पर। अब देखना कैसे वो आत्मा मिला देते भावेंद्री में, कि अभी आपने बताया कि हमें एक याद है ये रटा हुआ ये रटा हुआ है, आपने गे की रीडिंग करी थी गे का परिचय कराया था, अब आचार्य देव उसी में से कहेंगे तुम्हें समय सार का ज्ञान है ना, यहाँ समय सार का ज्ञान, तो समय सार गुण करो जो ज्ञान मात्र हो तुम, उसमें समय सार नहीं है ज्ञान ही ज्ञान है, यह ज्ञान का शीश महल यहाँ ज्ञानी रहते। शक्कर की चिड़िया में चिड़िया है कि शक्कर है? शक्कर ही शक्कर। सोने की चैन में कौन है? सोनी सोना। ऐसे ज्ञान स्वभावी आत्मा है और इसका प्रकट ज्ञान है और इस ज्ञान में घी जानने में आते हैं, परंतु आचार्य जी कहते इसके ज्ञान में घी है कि ज्ञान में ज्ञान है? ज्ञान। अब 24 घंटा आपको यदि ये निर्णय हो गया जोरदार मजबूती से तो घे दिखने पर भी ज्ञान दिखेगा, और निर्णय मजबूती से नहीं हुआ तो ज्ञान स्वभावी सुनने पर भी घे ही दिखेगा, क्योंकि आदत बहुत पुरानी हो गई ना, इसलिए बदलना बहुत ताकत लगता। अपन जिसके साथ रहे हो, जीवन बिताए हो, छूटने का नंबर हो तो कैसा लगता है? आकुलता लगती, इंजेक्शन देख के डर लगता है, और फिर लगवा लेते, ऑपरेशन के नाम से डर लगता है और फिर करवा लेते, और दस्तखत भी कर देती कि मर जाएंगे और क्या होगा, सब होते ही रहता है ना, कहाँ रुकते हैं सब काम। ऐसे ही आचार्य देव कहते अभी अपन को ये बातें सुना रहे हैं और ज्ञान में कोई गे नहीं आता, बिल्कुल भी एक भी गे नहीं आता, आता ही नहीं है, क्योंकि अपनी अपनी मर्यादा में सब रहते। और अभी आपको जो वचन सुनाई दे रहे हैं, जिन जनवाणी सुनाई दे रही है, इस ज्ञान में बिल्कुल जनवाणी नहीं है, ज्ञानी ज्ञान भी सर्वज्ञ देव के ज्ञान में आई बात है। वो कह रहे पूरा ज्ञान ही ज्ञान, अब ऐसा ज्ञान ही ज्ञान दिखने लगे तो सम्य ज्ञान हो जाता, और ज्ञान ही ज्ञान ना दिखे और जो जगत को दिखता है पर वो गेय का ज्ञान कहलाता, तो उसके कहते हैं गेयाकार और ज्ञानाकार। फिर से बता रहे ये ज्ञायक ज्ञान गे, ज्ञायक आत्मा है, ज्ञान प्रकट व्यक्त अंश है, और सारा जगत अपना सामने जो खड़ा है गे, और ये जब गे दिखता है ज्ञान में तो अब अपन उसका नाम देते हैं गेयाकार। गे के सदृश बनता है ना, हाथी सामने खड़ा हो तो दर्पण में हाथी जैसी आकृति बन जाती, तो गेयाकार कहलाता है। और भगवान ये कहते हैं गेयाकार नहीं है, ज्ञानाकार। थोड़ी सी मेहनत यहां करना, हाथी दिखा दर्पण में तो हाथी है कि दर्पण है? दर्पण है, परंतु हाथी जैसी शकल का आकार बनाता है कौन? दर्पण। तो अपन उसे हाथी की तरफ से देख के कहते हैं हाथी दिख रहा, और दर्पण की तरफ से देखते हैं तो उसमें कहते हैं दर्पण ही दर्पण। देखने की एंगल है अलग अलग। एक ही बहु और बॉम्बे में रहती, मलाड में रहे तो बहू बन जाती है, और पार्ले में आए तो लड़की बन जाती है। ये और दो नाम है उसके, उसी में गे जैसे झलकते हैं, रचना होती है, तो उसका नाम क्या पड़ जाता है? गेयाकार। और जब उसे देखते कि इस गेयाकार में है कौन, कि कोई नहीं है, ज्ञान ही ज्ञान है, तो उसका नाम क्या हो जाता है? ज्ञानाकार। तो वो ज्ञानाकार है बाबू जी के गेयाकार, लोग व्यवहार में उसे गेयाकार कहते, नहीं तो आप से ऐसा कह नहीं सकते हम कि समयसार उठाओ, क्योंकि आपको समयसार ही नहीं दिखेगा, ज्ञानी ज्ञान दिखेगा तो हम आपसे कैसे कहेंगे कि समयसार देना। ये सीमंदर भगवान नहीं दिखेंगे तो आप वंदना कैसे करोगे? तो गेयाकार भी दिखेंगे, परंतु सीमंदर भगवान सीमंदर भगवान में, और अपने ज्ञान में अपना ज्ञान है, तो ज्ञान में ज्ञान रहता है, तो ज्ञानाकार के दर्शन होते ही ज्ञायक के दर्शन होने। फिर से प्रगट अंश जो अपना ज्ञान है, इसको जो लक्षण बताया आचार्य भगवंतों ने, जिससे आपकी पहचान होती कि आप जीव राजा हो, इससे अंशी को पहचानो आपके, अरे मैं आत्मा हूं क्योंकि मैं जानता हूं। अभी आपको क्या दिखेगा? जानना। और देखना क्या है? जाननहार। जाननहार तो दिखता ही नहीं, मूल वस्तु है, तो वो मूल वस्तु नहीं दिखेगी पर उसका अंश दिखा। डॉक्टर साहब बताना, जैसे हाथी है एक बहुत बड़ी नदी में या सरोवर में डूबा और उसकी इतनी सी सूंड दिख रही, तो बताओ सूंड है कि हाथी है? पूरा हाथी है और आपको दिखा क्या है? सूंड दिखी, तो सूंड देख के हाथी जान जाते हो। ऐसे ज्ञान देख के क्या जान लेना चाहिए? क्या है इतनी सी पढ़ाई और अनंत भाव हो गए। क्योंकि ये अपन को समझ में नहीं आया ऐसा नहीं, पर इसने रुचि नहीं की, कभी आदर नहीं किया। स्वामी जी कितने भजन से कहते ये बात सर्वज्ञ कह रहे, इति परिचित तत्व रात्मिका यही कितायाम, ऐसे पढ़ा रहे थे। ये परिचित है सर्वज्ञ को, पहले परिचित हुआ है इसका परिचय हुआ, फिर तुझे ये काया की एकता, देह की और आत्मा की एकता जो है व्यवहार से कही गई थी, वास्तव में बिल्कुल एकता नहीं, क्योंकि शरीर शरीर में रहता है और आत्मा आत्मा में रहता है। भाई सब एक प्रश्न, मिस्त्री है और उसमें मिठाई बनाई, पांच पांच जगह रखी और पांच रंग के कलर डाले, लाल पीला नीला लाल आदि पांच, तो बताओ मिठाई कितने प्रकार की, एक ही प्रकार की हुई कि नहीं? तो ज्ञान कितने प्रकार का हुआ, मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान, कितने प्रकार का हुआ, ये पढ़ा ये समय सारी। तुम ऐसा अपने आप को बहुत छोटा देखते हो, वो कह रहे अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान चाहिए किसे, ये तो गेय को जानते हैं, इससे कोई आत्मा का कल्याण नहीं होता, इससे कभी आत्मा का अनुभव नहीं होता, मोक्ष मार्ग नहीं चलता, धर्म नहीं होता, ये तो एक्स्ट्रा, जैसे यहाँ पर एक बकरी के थन लटका रहता है ना, पर वो दूध दूध नहीं आता उसे, छह उंगली रहती है किसी किसी की, पर वो कोई काम की नहीं आती, छठवीं उंगली ऐसी लटकती रहती, ऐसे ही अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी है आ गया हो, पर उससे आत्मा नहीं दिखती किसी, तो चाहिए अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान चाहिए, आत्मा चाहिए बाबूजी, और आत्मा मिलती है प्रगट अंश से, और प्रगट अंश निर्दोष है, ज्ञान से गया एक पकड़ में आता है। ये भावेंद्रिय समझ आए दिलीप भैया, भावेंद्रिय को जीतना, यानी तुमने जो ज्ञान से गेयों को जानने की बात कही थी, हमने सब पढ़ा है, ये भी पढ़ा ये भी पढ़ा ये भी पढ़ा, वो उन्होंने क्या बताया कि तुम्हें समय सार का ज्ञान है, नियम सार का ज्ञान है, सब सब शास्त्रों का ज्ञान, अब हम हमसे सुन, तुम्हें सिर्फ ज्ञान है, उस ज्ञान में न समय सार है न नियम सार है न प्रवचन सार, ज्ञान मात्र को देखोगे तो केवल ज्ञान आ जाएगा, और ज्ञान को ऐसा फैलाओगे तो सब में ज्ञान भी नहीं आएगा, शास्त्र ज्ञान आएगा। तो ये भावेंद्रिय को जीतने के लिए कहा कि भिन्न भिन्न अपने विषयों में व्यापार भाव से, भिन्न भिन्न यानी यहाँ यहाँ के दरवाजे से देखोगे तो वर्ण दिखेगा, इसकी तरफ से देखोगे तो गंध दिखेगी, है ना, गंध का ज्ञान हुआ तो गंध का ज्ञान है वो, कोई ज्ञान का ज्ञान है, ये ऐसा समेटते हैं, ऐसा नहीं कहते कि गंध का ज्ञान तुम्हें नहीं हुआ, आप तो ये कहोगे ना फूल बहुत सुंदर कि तेरा ज्ञान बहुत सुंदर, ज्ञान में फूल नहीं है, तेरा ज्ञान की सुगंध है ये जो भूला है। तो भाव इंद्रियों को खंड खंड जो ग्रहण करती थी, ऐसी भाव इंद्रियों को प्रतीति में आने वाली, अब किस बल से जीती जाती है, प्रतीति में लाओ श्रद्धा का विषय कि ज्ञायक आत्मा नाक से सूंघेगा, ज्ञायक आत्मा जो सर्वज्ञ स्वभावी कान से सुनेगा, ज्ञायक आत्मा आंख से देखेगा, कि ज्ञायक आत्मा ज्ञान से जानेगा है? स्वामी जी से एक प्रश्न किया था किसी ने, उसमें आया दृष्टि के निदान, कि स्वामी कि अकाल पड़ा है और हम लोग भूखे मर रहे हैं और साहब क्या खाएं क्या पिए, ऐसा राजा के पास गए लोग मिलने के, तो राजा ने कहा खाजा खाओ और खीर खाओ, तो उसने कहा हम भूखे मर रहे हैं, हम प्यासे मर रहे हैं, बारिश भी नहीं हो रही, अनाज भी नहीं है, तो ये राजा को समझ में नहीं आता हम क्या कह रहे हैं, तो मंत्री से उन्होंने कहा कि भाई साहब हम ये कह रहे हैं कि हम भूखे मर रहे हैं और ये राजा कह रहा है खीर खाओ खाजा खाओ, तो वो बोले कि राजा क्या जाने अकाल क्या होता, उसे समृद्धता दिखती, ऐसे ही तुम्हें गाय की रुचि हो जाएगी तो तुम खुद कहोगे कि अरे रे मैं कहता था गेय का ज्ञान, ये तो ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यह तो ज्ञान का शीश महल, सारा रस टूट जाएगा गेयों का, अभी जो खंड खंड अपनी चतुराई बताते ना, मैं डॉक्टर हूं मैं वकील हूं, ये बूंद बराबर लगेगा ये ज्ञान, इतना सुंदर सम्यक ज्ञान है, आनंद देता हुआ प्रकट हुआ। ज्ञान की पहचान है कि वो आश्रयों से निवृत्त कराता हुआ प्रकट हुआ, ज्ञान की पहचान है कि सो को सो, पर को पर बताता हुआ प्रकट होता है। ज्ञान की पहचान है सम्यक ज्ञान की, उसे प्रकट होने पर आनंद आता है। और ज्ञान को नहीं जाना तो गे लुब्धता बढ़ती जाती। आप देखना, ये पढ़ोगे फिर ये पढ़ोगे फिर ये पढ़ोगे, गे की रीडिंग बढ़ेगी और गे एक से हटता जाएगा। ये दूसरा बोल है जो अपन को बहुत बचाता, कि आप भावेंद्री से जगत को जानने की कोशिश करते हो, जिसका ज्ञान है उसे भी तो जानो, जिसका कमाल है कहां से ज्ञान आ रहा है, कभी उसके बारे में तो सोचो कि ज्ञान तो ज्ञायक से बह रहा है और तुम्हें गे से आता हुआ दिखता है, और गे से दिखेगा तो गे लुब्धता नहीं छूटेगी, बढ़ती जाएगी। बहुत सरल मार्ग है, परंतु अपन को गहरी रुचि चाहिए। सिर्फ पढ़ने से अकेले काम नहीं चलेगा, इसके लिए तो समर्पण चाहिए। जैसे पहले के शादी संबंध होते थे तो कोई भी ज्यादा खोज भी नहीं करते थे, लड़की मिल गई लड़का हो गया दोनों मिल गए और कैसे भी रहें, और इतना सामंजस्य रहता था कि जीवन बहुत अच्छे से बीत जाता, दोनों के परिणाम मेल खाते थे, घर चलाते थे, शांति रहती। आज के लड़कों की इतनी रीडिंग करते हैं, सैकड़ों लड़कियां देखेंगी और फिर बाद में बहुत फिर महीनों मिलेंगी जुलेंगी और दो महीने नहीं लगेंगे और अलग अलग हो जाए। तो ये क्या है कि बहुत ज्यादा समझ गए हैं और समर्पण बिल्कुल नहीं, और पहले के लोग कम समझते थे परंतु समर्पित हृदय रहते थे। पहले कितने भद्र प्रणाम से भगवान की पूजा करते, ज्यादा नहीं पढ़े लिखे थे, अच्छा लगता था, हमारे भगवान हमारा मंदिर हम सेवा करेंगे। और आज क्या है, अब बाबूजी बन गए अपन, ज्यादा पढ़ गए। तो ये भावेंद्रिया ने ज्यादा पढ़ाई, गेय की अभ्यास, ये तुम्हें आत्मा नहीं देखने दे रही, मिठास जो गेय की आ गई है तुम्हें कि मैं बहुत जानता हूं, ये तुम्हें ज्ञायक नहीं जानने दे रहा। और वो कह रहे जो तुमने बहुत जान लिया है उसमें ज्ञान ही ज्ञान है, गेय है कहां जो तुम अकड़ रहे थे। भाई सीए हो गए, डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, तो हो क्या गया, तुम हो तो वैसे ही, तुम्हें ज्ञान ही तो हुआ ना, तो ये ज्ञान तो ज्ञान ही है, इसमें ज्ञान में गेय कहां। इतना गजब का लगता है, ये पढ़ो तो ऐसा लगता है भगवान ने जैसे हमें कोई नंदीसर द्वीप में भेज दिया, विदेश भेज दिया, कितना हल्का कर दिया, नहीं तो ज्ञान मत आता बाबूजी, जरा सा पढ़ लिया अपन ने और गद्दी पे बैठ गए तो हम बड़े पंडित हो गए। अरे भैया बड़े पंडित तुम स्वभाव से हो, इसको पढ़ के नहीं हो, स्वभाव से ही जीव ज्ञानमयी है। आत्मा ज्ञानम ज्ञानादन्यति करोति। तो ऐसे अपन प्रगट अंश से, जैसे हिरण होता है ना बाबूजी, वो खुशबू के लिए बाहर भागता, और उसकी सुगंध कहाँ है, नाभि में, ऐसे ही ज्ञान कहाँ है, यहाँ, और भागते कहाँ है अपन। समय हो गया अपना, बस एक छोटा सा उदाहरण देके, एक अंधा और एक कुबड़ा, ऐसे दो व्यक्ति थे, एक की आंख में दिखता नहीं था और एक के चलते नहीं बनता, तो चलते नहीं बनता था वो दिखता था, तो उसने अंधे से दोस्ती कर ली कि अपन दोनों मिलके भीख मांगेंगे तो हम तुम्हें रास्ता बताएंगे और तुम गली निकालना, और सेठ बता देंगे ये सेठ खड़ा है तो इससे मिल जाएंगे। तो इस तरह से दोनों का व्यवसाय चलेगा, अभी तो दोनों भटकते रहते, तो दोनों की मित्रता हो गई। अब वो लंगड़े को लगा, लंगड़े लूले बड़े उपाय होते ना, तो उन्हें लगा कि यार मेहनत तो हमारी चलती है, हम देखते हैं, देखना तो बहुत बड़ा, तो हम देखते हैं तब ये कमाई होती और ये मुफ्त में खा रहा अंधा, तो इसको मार डालो साले को। तो उन्होंने क्या किया, उसके खत्म करने के लिए खीर बनाने की तैयारी की और जहर खरीद के लिया, और जहर डाल दिया दूध और चावल वाले खीर में, लकड़ी लगी थी और एक लकड़ी दे दी कि गंज में तुम ऐसे घुमाते रहना और ये चूल्हे के पास बैठ, और हम थोड़ी देर से आ रहे हैं काम से, और तुम जब तक ये खीर निकाल के खा ले। तो क्या हुआ, वो खीर जो बन रही थी उसकी इतनी तेज झार निकली जहर की कि उसको धुआं लगा आंखों में, और धुआं लगने से उसका पर्दा फट गया जो गड़बड़ी थी, तो एकदम से उसे दिखने लगा, दिखने लगा, फिर उसे लगा कि यार ये आंख का इलाज हो कैसे गया, कि ये बहुत जहरीली चीज थी और इससे एकदम से ऑपरेशन हो गया, परंतु ये आंख तो खुल गई, परंतु इसमें है क्या जिससे, और कुछ गड़बड़ी तो नहीं। तो उसने वो खीर को बाहर डाला तो उसे किसी जानवर ने खाया, वो मर गया। तब उसे लगा कि इसमें जहर डला, तो बहुत गुस्सा आई जोर से, और उसने कुबड़े को लंगड़े को देखा कि बैठा कहाँ है, और इसे भी हम भी सजा देंगे, ये हमें मारना चाहता। तो गए और देखा कि एक चौगड्डी पे वो भीख मांग रहा था, तो इतनी गुस्से में उसकी एक लात मारी यहाँ कमर में, तो उसकी कमर सीधी हो गई। तो यदि इस कहानी में अपन को क्या शिक्षा देना कि कोई किसी को मार सकता नहीं, ये तुम उसकी कमर तोड़ने की सोच रहे हो और वो सुधर रही है, यानी इतना जगत व्यवस्थित है और अपनी मति व्यवस्थित करके अपन शांति से रह सकते। वैद्य से कहा बहुत दर्द है, पेट में बहुत दर्द है, तो वैद्य ने कहा सेठ जी अपने कंपाउंडर से कि इनकी आंखों में सलाई लगाओ। आपने सुना नहीं हमारे पेट में बहुत दर्द है कि हाँ हाँ सुन लिया, इनकी आंखों में सलाई लगा कि आंखों का इलाज क्यों कर रहे हो कि तुम्हें भक्ष भक्ष क्यों नहीं दिखता, गड़बड़ी तो खाने में तुम्हारी देखने से हुई रहे। ऐसी गड़बड़ी से अपने ज्ञान से प्रयोग विकल्प निर्णय लेने की नहीं हुई तो इस दशा हो रही, और वो दशा का सुधार अपने जीवन में। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ।